वैष्णवेश माता जी तत्वं अस्तित्व विशुद्धं दिव्य तीन गुणों से अतीत। देवतागण यहाँ पे बता रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कृष्ण, कृष्ण को संबोधित करते हुए, कृष्ण को देखते हुए, देवकी के गर्भ में कृष्ण का दर्शन करते हुए वे संबोधित कर रहे हैं। आप यद्यपि इस धरातल पर आते हैं पर सत्व विशुद्ध स्तर पर रहते हैं, ये प्रकृति के तीन गुणों आपको स्पर्श नहीं करते हैं। जो साधारण लोग जिसके जकड़ में आ जाते हैं तो कहते हैं आप सत्वम विशुद्ध स्तर पर रहते हैं, गुणों से परे। आगे सर्यते स्वीकार करता है भगवान आप, वे कृष्ण को देख के बोल रहे हैं आप विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। आप स्थितो इस जगत के पालन के समय कब आते हैं आप, कब आते हैं आप? शुरू अंत और बीच में, जब जब धर्म का ग्लानी होता है, जब सृष्टि हो चुका है, पालन करने का समय रहता है, बीच बीच में धर्म का ग्लानी होता है, तो भगवान वापस वापस बार बार शरीर लेके आते हैं। बड़ा सुंदर प्रार्थना है। तो शरीरी नाम सारे जीवों के, जितने भी शरीर धारण करने वाले देहधारी जीवों के श्रेय, उनके हित के लिए, कल्याण का, परम कल्याण का उपया नाम लाभ के लिए। आप आए तो आए किस लिए? आप यहां किस लिए आए? क्या काम है? हम आते हैं जाते हैं कुछ लाभ लेने के लिए, पर भगवान आते हैं सबके लाभ के लिए, परम कल्याण के लिए, श्रेय के लिए। तो ये बात बता रहे हैं। उपयानम का न का अर्थ होता है लाभ के लिए, सबके परम लाभ के लिए। बपुहु दिव्य शरीर, भगवान का शरीर दिव्य है। जगन्नाथ, गिरिधारी, चैतन्य, ये तीनों कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हैं। वेद क्रिया, वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा, वाह स्वाह इत्यादि, योगा भक्ति द्वारा, तपह तपस्या द्वारा, समाधि भी समाधि द्वारा, तब तुम्हारी, बोलिए तुम्हारी, आप सब भाव विभोर हो गए लगते हैं देवताओं के सुंदर पात्र, ऐसे मूर्छित हो जाएंगे तो सेवा से वंचित हो जाएगा, श्रवण का सेवा से वंचित हो जाएंगे आप सब। सेवा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। अक्रूर महाराज चामार डुला रहे थे, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके भाव विभोर हो रहे थे। तब उन्होंने कहा, ऐसा भाव विभोर होना ये इसका धिक्कार है जो मेरे इस सेवा से मुझे वंचित करता है या सेवा में विक्षेप है। तो आप भी इस श्लोक का आनंद तो ले रहे हैं और भक्तगण तो परम आनंद में भाव विभोर होकर मूर्छित अवस्था में, सेवा में विक्षेप है ये। फिर बदनम गदगद गर्र, बोलेगा वाह यही भाव है, फिर मुंह से फेन भी निकलेगा, बोलेगा यही अदर अमृत है, रसामृत है, यही कथा अमृत है। नहीं नहीं नहीं, भाव का आनंद लीजिए और आएगा बहुत सारे बातें, इसका भी आनंद लीजिए। कम आनंद क्यों ले रहे हैं? ये हमारा आपसे निवेदन है। आप सब सेवा, श्रवण का सेवा और मुझे कीर्तन का सेवा का लाभ दीजिए। आगे जनह, एक मिनट, योग भक्ति द्वारा, तपह तपस्या द्वारा, समाधि भी समाधि द्वारा, तब तुम्हारी, अरहनम पूजा, एना ऐसे कार्यों से, जनह मानव समाज, समीहते कृतज्ञता प्रकट करता है, अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की मैं जब कथा करता हूं तब एक बार एक व्यक्ति आया था, बोला प्रभु जी आप कहाँ कहाँ कथा करते हो? मैं बोला सोमवार को मैं विरार में करता हूँ, मंगलवार दहीसर करता हूँ, बुधवार मीरा रोड, गुरुवार कोई प्रस्ताव आ गया तो शुक्रवार मंदिर में, शनिवार को और जगह पर। बोला जहाँ जहाँ आपका कथा होगा आप मुझे बुलाइए। तो बोला बहुत अच्छा, आज तक ऐसा कोई मेरे पास आया नहीं जो कहा कि मेरे कथा के लिए इतना ललाई तो कराए। बोला बात क्या है, क्या अच्छा लगा मेरे कथा में? बोला बहुत सालों के बाद मुझे नींद आया। तो मैं सच अच्छे लोग कहने दी वो लाभ ले रहे, और क्यों नहीं, भगवान का भक्ति जो है सुसुकम सुख प्रदान करता है। अरे हम धन संग्रह करके एक महल बनाते हैं, बंगला बनाते हैं और उसमें अच्छा कोमल मखमल बिछौना में सोते हैं पर इसमें नींद नहीं आती है। लोगों का कंप्लेन है नहीं आएगी, क्योंकि ये भौतिक जगत का जो बिछौना है वे कांटों से भरा हुआ है और कांटों में जो सोएगा कैसे नींद आएगी? भगवान भक्ति सुसुगम है, आनंदमय है, सब दुखों से निवृत्त होकर मस्त हो जाता है। फिर भी आप सबसे निवेदन है, कथा का और भी लाभ लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी का यह लंबा तात्पर्य है, आप सब बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा तात्पर्य, मेरा दिव्य, इसमें ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी यानी कि ये मेरा दिव्य भाव मैं प्रकट करता हूं। ये ग्रंथ जितने भी मैंने लिखे हैं ये मैंने नहीं लिखे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मैंने नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद जी जब जब भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते हैं या नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं, बोलते ये सब किसने लिखा? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो लिखने बैठता हूं पर लिखते स्वयं भगवान। तो ये दिव्य प्रभुपाद जी के आनंद का भाव है, आप सब इसका भी आनंद लीजिए, मूर्छित ना हो जाइए, भाव विभोर मत हो जाइए। हे प्रभु, देवता लोग बोल रहे हैं हे प्रभु, पालन करते समय आपका त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले, आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि आपके चिंतन में भाव पूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है, वैदिक कर्मकांड दान तपस्या तथा अन्य संस्तुत कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म नातजयम्। आप जो आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ा चढ़ा हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक, यज्ञ दानम तपश्चेना पावनानि मनीषी नाम। यज्ञ दान और तप मनीषी यानी कि ऋषियों को भी, मनन करने वाले मुनियों को भी पावन करते हैं। यहां तक कि नियमित निम्नतम अवस्था में भी कर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान की नियमित कार्य करें। यज्ञ अर्थात कर्मनो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधनम। विष्णु के लिए यज्ञ कर्म ना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत से बोध देता है, बांध देता है। यज्ञ अर्थात कर्मनः शब्द सूचित करते हैं कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण करना चाहिए कि ये कर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए की जाए। स्वकर्मन तमभ्य तमभ्यराम। वैदिक नियमों के अनुसार मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्णम मयाश्रिष्टम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में से हर एक को भगवान की पूजा करनी सीखना चाहिए। तम ध्यार अर्चयम। यही असली मानव समाज है और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में चले जाते हैं। यानी कि भगवान को सेवा के माध्यम से संतुष्ट करना है, अर्थात हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यानी कि श्रवण का सेवा हमारी जारी है, इस सेवा से भगवान को संतुष्ट करना है, अर्थात गिरधारी जी जगन्नाथ जी को संतुष्ट करना है, यानी कि ध्यान पूर्वक बड़े ललायित होकर तीव्रता से सुनना चाहिए, तब भगवान को लगेगा ये सेवा ठीक से कर रहे हैं। ये तो भाव विवर्त तो नहीं हो गया बीच में कहीं तो भगवान बोलेगा अरे इतना आनंद आ गया इसको कि तात्पर्य में ही भाव ले रहा है वो। श्रवण सेवा भी के द्वारा भी हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, कीर्तन सेवा से भी भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। मानव समाज के आधुनिक यानी कि आज के कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में खोकर गोवों तथा और गदा के कार्यों के रूप में हुआ है। स एव गोकर। दोबारा गोकर, एक बार गोकर बोला फिर से बोला स एव गोकर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर एक, हर व्यक्ति देह आत्मा के कार्य करता है। देह आत्मा बुद्धि से कार्य करता है जिसमें समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। देह आत्म बुद्धि से कार्य करते हुए जो भी कार्य करता है इसमें क्या है, भगवान की संतुष्टि नहीं है, लक्ष्य और कुछ होता है। इसलिए भगवान हमें सिखलाने के लिए आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और यह उपदेश दिया है। इस युग में वैदिक कार्य कलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता है क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं। उन्होंने शास्त्र के आधार पर यह संस्तुति की, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम क कलो न अस्त एव न अस्ति एव न अस्ति एव घटीर अन्यथा। कलह तथा दिकावे के इस युग में उद्धार एकमात्र साधन, उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलह अर्थात छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े, दिखावा, रोटी कपड़ा मकान पद पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मेरा रोटी तुम्हारे रोटी से बड़ा है, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े से सफेद, मेरा बंगला आपके बंगले से चमकदार, ये दिखावा है का जमाना है ना। दिखाते हैं इसके पास मेरे से ज्यादा सफेद कपड़ा है, भला उसके कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, ये दिखावा का जमाना चालू है। एक दूसरे को दिखाते रोटी देखो मेरा इसमें इसमें क्या क्या लगा हुआ है, आपका रोटी सूखा है, अरे भूख की तो मिटाना है, मेरा कपड़ा देखो कैसा है चमक रहा है हीरा लगा हुआ है इस कपड़े, अरे शरीर को ढकना है थोड़ा प्रकृति के ताप से बचाना है शरीर को, मकान अरे वो तो आश्रम है थोड़ा सा शरीर को आराम देने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, ऐसे मकान बनाते हैं जिसमें बाथरूम भी, लोग तो आजकल बाथरूम में ज्यादा समय बिताते हैं, मोबाइल में बातें करते हैं इंटरनेट में बाथरूम के अंदर ही सब कुछ, इतना चमकदार बाथरूम। बाथरूम को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा रूम कहते थे जहां से व्यक्ति को जल्दी अपना काम खत्म करके बाहर निकल जाना चाहिए। वो पुराने जमाने के बाथरूम एक ऐसा हुआ करता था, एक खड्डा खोदते थे उसमें अपना शौच छोड़ कर जाते थे, इतना बदबू मारता था कि लोग इंतजार करते थे कब पेट खाली हो जाए, और जैसे काम पूरा होगा काम तमाम हो गया भाग जाते हैं उस जगह से। इसी प्रकार से भौतिक जगत में इतना दुख है, कहते हैं कि इतना दुख है, हमें अपना भक्ति का कार्य पूरा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, जितने भी पाप उससे मुक्त होकर सोच करके पवित्र होकर भाग जाना चाहिए। बाथरूम को भी इतना सजा कर रख दिए तो लोग समय ज्यादा बाथरूम में बिताते हैं, एयर कंडीशन हीटर क्या क्या नहीं टब। तो ये दिखावा का जमाना चालू है, रोटी कपड़ा मकान, मेरा पद तुम्हारे पद से ज्यादा है, मेरा पूजा तुम्हारे से ज्यादा पूजा हो रहा है, मेरा प्रतिष्ठा तुमसे ज्यादा, दिखावा। लोगों को धन देकर बोलते हैं आओ आओ मेरा पूजा करो इलेक्शन में जब खड़े होते हैं, तो ये दिखावा सर दिखावा का जमाना है। तो ये सब देहात्म बुद्धि है, यानी कि शरीर से संबंधित आत्मा से कुछ लेना देने, इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरेक कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं जिससे हम उन्हें समझ सके। वेदे च सर्वे अहमेव वेद्य, हमें यह जानना चाहिए कि कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीर के साथ प्रकट हुए हैं हुए थे। हमें कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के शरीरों को अपने जैसे भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। भगवान अहतु की कृपावश विभिन्न युगों में अपने शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं, यश, आत्मा, बुद्धि, कुनापे, विदा तुके, ये दशम स्कंद में धन के द्वारा कहा गया श्लोक है कुरुक्षेत्र में, पर बल देते हुए इस या उस वाद के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जिन्हें वे कई प्रकार की सुंदर भाषा में वर्णित करते हैं, पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णित करते हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलापों पशु के कार्यकलाप है, स एव गोकर। जो भी वाद है, सामान्यवाद, फिर राष्ट्रवाद, ये वाद वो वाद, वो सब शरीर का है, इसे पशुवत पशु तुल्य है, ऐसे कहते हैं। हमें भगवत गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। भगवत गीता में भगवान इतने सारे बातें बताए हैं, पर इसमें केवल हमारे कल्याण हेतु बताते हैं एक एक बात। मन मना बो मन भक्तो, भगवान कहते हैं मन दो मुझे, सर्वधर्मान परिताज। इसमें लाभ किसका है? भगवान को हमसे कुछ लेना देना नहीं। अगर हम भगवान के धाम नहीं गए, भगवान के भक्ति नहीं गए, भगवान के धाम में कुछ कमी नहीं पड़ रहेगी। भगवान पूर्ण है, पूर्ण मद पूर्ण, भगवान पूर्ण है, उनका धाम पूर्ण है। अगर हम यहाँ भक्ति नहीं भी करेंगे तो भी भगवान मस्त रहेंगे, भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं। कोटि कोटि लक्ष्मियां, अनगिनत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में। पर भगवत गीता में जितने उपदेश है हमारे कल्याण के लिए भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। भगवत गीता में हमें भगवान भगवत गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथ जीवं साधवैतं साधुतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौर निताय इनके परम अनुकंपा से आज हम इनके छत्र छाया के अंतर्गत उनके चरण कमलों में सेवा प्राप्त कर रहे हैं। उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस युग के युगाचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आप सब से प्रार्थना है, आप सब मुझे ऐसे दिव्य शक्ति प्रदान करें जिससे कि सेवा के माध्यम से गुरु प्रभुपाद जी और वैष्णव को मैं प्रसन्न कर पाऊं। आइए इसी के साथ आज के सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। परम मंगल श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये परमहंस संहिता है, वैष्णव संतों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हुए मंगलाचरण में श्रील वेदव्यास मुनि, जिसे महामुनि भी कहा जाता है, भाव विभोर होकर, अति भाव विभोर होकर कहते हैं कि वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का आप सेवा मत करो, श्रीमद् भागवतम का आप श्रवण मत करो, श्रीमद् भागवतम का कीर्तन मत करो, केवल संकल्प करो कि मैं भागवत का अनुष्ठान भविष्य में करूंगा। मैं एक दिन भागवत श्रवण करूंगा या एक दिन भागवत कीर्तन करूंगा, केवल संकल्प लीजिए, श्रवण मत करो, कीर्तन मत करो। लिखते हैं सदय हृदय आवृत तक्षणात्, कहते हैं कि वह भगवान जो अजित है, किसी के द्वारा जीता नहीं जाता है, वह भगवान जो मुक्त है, वो बंद जाते हैं, हृदय के अंदर बस जाते हैं। सदय हृदय आवृतते तक्षणात्, उसी क्षण पर जिस क्षण वो संकल्प करते हैं, आप श्रवण मत करो, कीर्तन मत करो। इतना इतना महान ये श्रीमद् भागवतम है, इतना महान है, इसके एक एक शब्द एक एक अक्षर में प्रेम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। राधा रानी का कृपा एक एक शब्द में, इसलिए सुख इसे चोंच लगाता है। सदा हृदय सदय हृदय अवदते, तुरंत हृदय में भगवान बस जाएंगे। कौन है वो, कौन है वो जो श्रीमद् भागवतम का सेवा करना चाहता, अभी तो चालू भी नहीं किया, और जो सेवा करेगा उनके लिए क्या होगा, भगवान नाचेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। वैष्णव संतों का परम धन है ये। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकलादनी सजन सुहृदलादनी महारानी भगीरथी के डबल दारा किनारे में आम रणचन व्रतरायन महाराज परीक्षित को उन प्रभु के दिव्य चरित्रों का वर्णन करते हुए अब मथुरा पहुंच गए हैं, कंस के कारागार में पहुंच गए हैं, जहां पे वसुदेव देवकी देवकी के दिव्य बपू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके दिव्य शरीर में इतने सौंदर्य और तेज आ गया, मानो कि पूरा कारागार आलोकित हो गया, इतना सुंदर दिव्य शरीर। सारे देवता एक एक करके आ गए, शिव जी ब्रह्मा जी गणेश जी आ गए हैं और एक एक करके स्तुति यहां पे कर रहे हैं। उन स्तुतियों में से एक स्तुति है, भगवान का आगमन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं उससे पहले जितने भी छोटे मोटे नौकर चाकर नगर सेवक है वो सब आके खड़े हो जाते हैं आपका स्वागत। इसी प्रकार से भगवान पूरे सृष्टि के नायक हैं, मालिक हैं, वो जब आते हैं तो छोटे मोटे जितने भी हैं ब्रह्मा शिव नारद स्तुति कर रहे हैं, आपका जय हो आपका जय हो। और इनके प्रार्थना इतने सुंदर है, कहते हैं कि भगवान आप महान हो और आपका भक्ति महान है, आपका भक्ति महान है। भगवान का भक्ति का वर्णन का महिमा पिछले श्लोकों में किया जा रहा है। कहते हैं कि भगवान का भक्ति कैसा है, जैसे भगवान भागवत के भगवत गीता में वर्णन करते हैं सुसुतम कर्तम अव्ययम। ये सुसुतम है भक्ति का जो मार्ग है शुरू में भी आनंद प्रदान करता है, हम भक्ति के शुरुआत में भी आनंद का अनुभव करते हैं। कोई भक्ति में बहुत बड़े चढ़े भी नहीं है कि संत बन गए या हमारा मन पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो गया, ऐसा भी नहीं। बस प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम देखते हैं जो आते हैं संध्या आरती में कीर्तन हो रहा है तो वो भी मस्त हो जाते हैं, कीर्तन के बाद प्रसाद उसमें भी मस्त हो जाते हैं, और श्रीमद् भागवतम में तो सभी लोग मस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम सुसुकम सुसुकम कर्तम अव्ययम सुसुकम। हम भक्ति को शुरू किए हैं, ये मार्ग बहुत ही सुंदर है, ज्यादा तपस्या नहीं, बहुत शरीर को तपाना नहीं है, ज्यादा संस्कृत अध्ययन भी नहीं करना ना। सुसुकम नाचो गाओ प्रसाद लो चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग, वाह क्या विधि है ये, कितना अद्भुत है ये, है ना। प्रभुपाद जी इसे और मस्त कर दिए, बच्चे लोग इसमें नाचते हैं, किसी को देखा तपस्या करते हैं बच्चों को नहीं, वो कभी कभी एक आध बार नकल करेंगे फैंसी ड्रेस में नहीं, पर बच्चे भी नाचते हैं। इवन स्मॉल चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन दिस, प्रभुपाद जी की आवाज में प्रभुपाद जी एक बोलते हैं इवन स्मॉल चाइल्ड कैन टेक पार्ट, एक छोटा बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। सुसुकम है, बच्चों को अच्छा लगता है और वो भी आ जाते हैं, तो बड़े हैं शुरू में ही आनंद प्रदान करता है। सुसुकम कर्तम अव्ययम, ये बहुत ही आनंद है। इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसे भगवान का भक्ति, पिछले श्लोक में कल के श्लोक में कहते हैं कि ऐसा भक्ति करते करते एकाध बार कोई भक्ति मार्ग से च्युत भी हो गया है, यानी कि कुछ समय के लिए वो भक्ति से अलग भी हो गया है, ऐसा भी आता है दिखाई दे रहा है। वो प्रभु जी 3 साल से लगातार आ रहे थे, आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहते हैं कि उसका पतन जो है, उसका जो पतन हुआ है या उसका जो नुकसान हुआ है उतना भयंकर नहीं होगा जितना कि एक योगी या ज्ञानी का होता है या एक कर्मी। वो व्यक्ति जो 4 साल तक आया था, हमारे मंदिर में भी ऐसे बहुत हैं, शायद हम में से कोई बैठे नहीं होंगे, या मैं अपने बारे में भी कहूंगा, मैं 1990 कॉलेज में था तो मस्त में कीर्तन प्रवचन प्रसाद आनंद लेता था, फिर फौज में जुड़ गया, यानी कि अलग हो गया पर वापस पद पर आ गया। ऐसे हैं बहुत सारे भक्त जो 2 साल आने के बाद दिखाई नहीं पड़ता, फलाना प्रभु जी दीक्षा भी लिया फिर भी ये इतना सुखमय है उसके रात के नींद को उड़ा देंगे, बोले कि नहीं वापस भक्ति करो। वो दिन कितने अच्छे थे जब हम मंदिर जाते करते थे, ऐसे रात भर मुझे दिन में फौज के अच्छे कपड़े 1000 लोग सैल्यूट मारते हैं ये सब ठीक है, पर रात को मन ही मन फिर से अंदर से आवाज आती है ये सब झूठ है गलत है, असली सुख तो वही था जब जेब में कुछ नहीं था, मंदिर धोते थे कॉलेज के जमाने में, मंगल आरती में शंख बजता था, बहुत अच्छा लगता था, वापस वो याद आ जाएगी। उसी प्रकार से जो भक्त कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं वो भी वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस संसार के जो कथाकथित सुख का असली रूप देख लेता है तो बोलता है नहीं, ये तो भगवान का भक्ति के सामने कुछ भी नहीं, वापस वो मंदिर आ जाता है। इतना महान ये भक्ति का मार्ग है और आपने इतना सुगम बना दिया है, हे कृष्ण बार बार इस धरातल पर आते हैं हम सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, कल हमने नरसिंह चतुर्थी चतुर्दशी मनाई, यहां पे भगवान आए, इससे पहले रामनवमी को मनाए, उससे पहले गौर पूर्णिमा और आगे हम जाके जगन्नाथ रथ यात्रा, फिर जन्माष्टमी, बार बार भगवान इस धरातल पर आते हैं। तो कहते हैं आप कैसे आते हैं, तो शुद्ध विशुद्ध सरयते, आप आते हैं पर आप जब भी आते हैं तो हमारे जैसे नहीं आते हैं, हम सबको प्रकृति के तीन गुणों से बांध कर, कर्मों के बंधन बांध कर हमें भौतिक शरीर दिया जाता है, उस भौतिक शरीर के माध्यम से हम आते हैं, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं कैसे हैं, तो कहते हैं सत्वम विशुद्धम सर्यते भवान स्थितो, भवान आप शुद्ध सत्व में स्थित हो, आप शुद्ध सत्व में, इस जगत के साधारण नियम लागू नहीं होता है भगवान के लिए, भगवान के लिए नियम लागू नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं रोड में चलने वाले जितने भी ऑटो मोटर कार स्कूटर चलते हैं, लाल बत्ती आए तो रुक जाए, हरा हो तो चलते हैं, पर अगर थोड़ा ऊपर चले हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चलता है तो कोई यहां से चिल्लाएगा अरे लाल बत्ती है रुको रुको, तो उसको लागू होता है। इसी प्रकार भगवान का एक अलग स्तर है, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। तमोगुण है आपको क्रोधित होना ही होना है, भगवान प्रभावित नहीं होंगे उससे, नहीं होते। प्रकृति का तीन गुण भगवान को बांधता नहीं है क्योंकि उनके चेतना बहुत ही उन्नत है, महान है। भगवान कितने महान हैं, तो कहते हैं आप जब भी आते हैं वो आप अपने काम के लिए नहीं आते हैं, आप अपने काम के लिए नहीं आते हैं। आप देखते हो कि संसार के लोग बहुत ही दुखी हैं, संसार के लोग बहुत ही दुखी हैं, इनके दुख मिटाने के लिए आप आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कहते हैं धर्म का जब ग्लानि होता है, क्योंकि सुख जो है ये धर्म से संबंधित है, सुख का मूल धर्म है, अगर धर्म नहीं रहेगा तो सुख नहीं रहेगा। आज जो भी सुखी दिखाई पड़ते हैं या शांत है या इसके पास संपत्ति है, वो आज या पहले कभी वो धर्म का पालन किया होगा, कब जाके आज सुखी हैं, और आज अधर्म का पालन करेंगे तो दुख विपत्ति और अशांति को प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि आप आते हैं लोगों का श्रेय कल्याण के हेतु आते हैं, शरीरा नाम, आप शरीर लेके आते हैं पर सबका श्रेय के लिए होता है। श्रेय का अर्थ होता है परम कल्याण, हमें पता नहीं है हमारा कल्याण किस में है, हमारा हित किस में है। एक बच्चा होता है वो दिन भर खेलता है और बोलता है खेलने में कितना मजा आता है, पर उनके माता पिता जानते हैं अगर ज्यादा खेलता रहेगा तो वो फेल हो जाएगा और उसे अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर वो जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बोलते आ जाओ ऊपर आ जाओ पढ़ाई करो। वो बोलता नहीं नहीं माँ, आप मेरा हित चाहती हो, मेरा हित इसी में है कि मैं सुखी रहूं, देखो खेलने में कितना आनंद आता है, देखो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कबड्डी खेल रहा हूँ, मैं खेलता रहूंगा, आप तो मुझे सुखी देखना चाहते हो। उन्होंने बोलता नहीं बेटा आ जाओ, तो वापस आ जाओ। बच्चा बोलता है ये माँ मेरे हित नहीं चाहती है, कंप्लेन करता है पिताजी को, बोलता है ये मेरी दुश्मन है। कंप्लेन करते हैं। बच्चा को तभी पता नहीं रहता है क्योंकि उसका चेतना हो, फिर जब पढ़ लिख कर जब बड़ा होता है तो कहते हैं मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, इन्होंने कितना कष्ट उठाया मुझे ट्यूशन भेजने के लिए, क्योंकि उसका चेतना उन्नत हो गया। वो अपना स्वयं को नहीं जानता है, वो अपना परम कल्याण को नहीं जानता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका ज्ञान बहुत छोटा होता है, उसके सामने एक बिस्कुट रखो तो तुरंत खा जाएगा, और उसके सामने एक सोना का बिस्कुट रखो, बोले इसमें से कौन सा चाहिए। छोटे बच्चे के पास एक ग्लूकोज बिस्किट रख दो और एक गोल्ड का बिस्किट रखो, आप उसमें से कौन सा बिस्किट चुनोगे? आप कौन सा बिस्किट चुनोगे? अरे बच्चा तो बोलेगा ये ग्लूकोज बिस्किट खाने से एनर्जी आएगा और कितना स्वाद टेस्ट है, गोल्ड बिस्किट में क्या मजा है। हाँ, पर जब वो बड़ा हो जाएगा वही बच्चा कहेगा ये गोल्ड बिस्किट अगर मैं लूंगा ऐसे हजार हजार ग्लूकोज बिस्किट का फैक्ट्री खोलूंगा, क्योंकि इसका चेतना ज्ञान का विकास हो गया। इसी प्रकार से भगवान हमें भक्ति का मार्ग का शिक्षा प्रदान कराने यहाँ पे आते हैं। इसमें हमारा परम कल्याण है, इसमें हमारा परम कल्याण है। पर हम नहीं कहते नहीं नहीं भगवान बार बार हम सबको ये जपा करने के लिए, ये ग्रंथ अध्ययन करने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे कितना आनंद आता है, रात को खाओ पियो दिन को आरंभ करो। बंबई से आया मेरा दोस्त, ऐसे दोस्त को दोस्त नहीं जूते मारो। रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। अरे जो दिन को सोता है वो कैसे जीवन में प्रगति करेगा? जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य देव आते हैं रथ पे आरूढ़ होके, उनके सारथी अरुण होते हैं और उनके सामने बहुत सारे घोड़े होते हैं, सात घोड़े होते हैं। जब सूर्य का उदय होता है उसके पीछे पीछे जो सौभाग्य का देवी उषा आती है, और जो जो जागते हैं स्नान करके मंगल आरती का जप इत्यादि करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम सौभाग्य के देवी उषा उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और जो सोते रहते हैं कहते क्या हमने क्या बोलते हैं नाइट कॉलिंग के, हाँ नाइट शिफ्ट हमारा है, इंटरनेट क्या क्या नेट है क्या बोलते हैं उसको, बीपीओ कॉल सेंटर में रात भर काम किया है। अरे रात भर आपने काम किया है, दिन को आराम किया है। सूर्य का देवी उषा जब कृपा बरसा रहे थे वो कृपा से वंचित हो गया, वो भले 15,000 आज कमा ले पर 2 साल के अंदर उसका सारा सौभाग्य ठप हो जाएगा, उसका शरीर ठप हो जाएगा, उसके चेहरे का तेज ठप हो जाएगा। रात को खाओ पियो ये शारीरिक इतना विपरीत हो चुका है, ऐसे देह आत्मा बुद्धि देह आत्मा देह में जिसका बुद्धि है, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान बार 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 आते हैं। कभी कभी नरसिंह भगवान बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी चैतन्य महाप्रभु बनकर, ताकि सबका चेतना को जागृत कराए और उनको भगवान की भक्ति मिल गए। श्रेय क्या होता है? हमारा कल्याण, परम कल्याण भगवान की सेवा में है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष जय अहय तुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसा सबका हित किस में है, भागवत का दूसरा प्रश्न है, 6 प्रश्न में दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में प्रश्न पूछा गया था सभी का हित किस में है, कहते हैं कि सभी का सभी पुंसा परो धर्म ये लौकिक धर्म नहीं, पारिवारिक धर्म नहीं, पिता का धर्म नहीं, माता का धर्म नहीं, परो धर्म जिस धर्म का वर्णन भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं, वो धर्म का शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं। परो धर्म, इसमें हमारा हित है। जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो बद्ध जीवों को यहां भेज दिया जाता है, और बद्ध जीव का स्वभाव है, बद्ध अवस्था में जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरती है, उसी प्रकार से हमारा चेतना समय के साथ, बद्ध जीव आलसी होते हैं, स्वभाव से हम आलसी हैं। भगवान का भक्ति करना है तो हम नहीं करेंगे, पर जब भी कुछ दबाव रहेगा तब हम करते हैं। इस प्रकार से जब चेतना का पतन होता है, धर्म का ग्लानि होता है, भगवान फिर से आते हैं, वापस धर्म को स्थापन करने के लिए। भगवान हमारा कितना ख्याल करते हैं, ऐसे भगवान का हमें भक्ति करना है। जो भक्ति करते हैं उनका भी ख्याल करते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं भगवान उनका भी ख्याल करते हैं, पालन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्नाद भवान्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवान। हर जीव है वो अन्न खाके ही पुष्ट होगा, तो भगवान अन्न का प्रबंध कर देते हैं। अन्नाद भवान्ति भूतानि, जितने भी भूता है, भूत है यानी कि जीव है, सब अन्न का के। हाथी 600 किलो खाएगा तो उनका भी राशन पानी दे देते हैं, चींटी 2 आना खाएगा उनका भी राशन, हमारे लिए भी भगवान दिया है, प्रचुर मात्रा में दिया है, कोई टेंशन नहीं रखना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर व्यवस्था बना के रखते हैं, ये समझ कर कि खा पी कर एक दिन मेरा भजन करेगा। इतना सुंदर भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, इतना सुंदर मैनेजमेंट भगवान का है कि अन्नाद भवान्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म। इस अन्न के अंदर शक्ति भरना होता है, उसको भी भगवान बताते हैं। रसो हम अब कौन थे, जैसे आम के रस में मीठा और विटामिन कौन है, कौन सा डॉक्टर केमिकल लेकर सिरिंज लेकर गया था आम के अंदर शक्कर और विटामिन का डोज भरने के लिए, आपने देखा? अंगूर के अंदर किसने विटामिन और स्वाद भरा है, कभी पूछे आपने? एप्पल के अंदर प्रोटीन और मीठापन किसने भरा? तो भगवान कहते हैं रसो हम अवसर कौन समय। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा का जब किरण आती है तो मैं सारे वनस्पतियों को और फलों को मैं पोषित करता हूं। गाम अवेशा च भूतानि दार्याम अमोजस पोषणामि चौषधि सर्वम सोम भूत रसात्मकम। भगवान इतना ख्याल करते हैं, अभी ये लोग अन्न खाएगा, इसके अंदर शक्ति भी प्रदान करना है, तो भगवान चंद्रमा के माध्यम से वो रस प्रदान करते हैं। कितना चिंता भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए। ऐसे भगवान को भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सुहृद हूं, उनका हम सेवा न करते हुए औरों का सेवा में लगे हुए। देह आत्म बुद्धि, इसको देह आत्म बुद्धि भगवान कितना ख्याल कर। इतना ही नहीं, जब मां के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है तो भगवान जानते हैं कि अगर इसे दूध पिलाया जाए, गाय का भी दूध पिलाया जाए, तुरंत तो मर जाएगा। बोलिए नहीं नहीं पराठा खाओ, इसमें घी लगाया है, इसमें खाओगे तो दम आएगा, बच्चा खाते ही मर जाएगा, पचा नहीं पाएगा, उसके दांत अभी तक निकले नहीं है। ऐसे बच्चे का भी भगवान ध्यान रखते हैं, उनका मैनेजमेंट देखिए क्या मैनेजमेंट है। तुरंत जो माँ जिनके, जो स्त्री जिनके स्तन में कभी दूध नहीं था, तुरंत बच्चे के आने से दूध आ जाता है, बच्चा वो दूध पचा लेता है, 3 महीने के बाद खाना पीना शुरू कर लेता है, 3 महीना, और 3 महीने के बाद माँ का स्तन वापस सूख जाता है। क्या मैनेजमेंट है, किसने माँ के स्तन में दूध भरा, बोलो? भगवान करते हैं ऐसा व्यवस्था, उनका ऐसा सुंदर मैनेजमेंट है। ऐसे भगवान हमारे सुहृद हैं, इनका हमें भजन करना है। इन्हें भूल जाते हैं और हम लग जाते हैं देश के सेवा में, समाज के सेवा में। ये सब सेवाओं को यहां पे क्या कहा गया है, देहात्म बुद्धि, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं देहात्म बुद्धि है। समाज चार वर्ण में बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और इसके नीचे के स्तर में अगर कोई है वो सब मनुष्य नहीं है, वो दो पांव वाले द्विपाद पशु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शास्त्र में वर्णन आता है। ब्राह्मण शिक्षक हैं, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक हैं और शूद्र सेवक हैं। अपने शिक्षा के माध्यम से ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करें, रक्षक के माध्यम से क्षत्रिय भगवान को प्रसन्न करें, पोषण के द्वारा वैश्य भगवान को प्रसन्न करें, सेवा के माध्यम से शूद्र भगवान को प्रसन्न करें, ये जीवन का लक्ष्य। अगर ये कोई नहीं करता है तो दो पांव वाला पशु है। शूद्र भी को भी एक स्तर है, वो मनुष्य माना जाता है शूद्र को भी, उसके नीचे वाले, क्योंकि शूद्र भी सुबह जल्दी उठता है, शास्त्र के नियमों का पालन इत्यादि करता है, उसे मनुष्य करके गिना गया है। चार वर्ण चार आश्रम, मनुष्यों का चेतना को उत्थान के लिए, उठाने के लिए भगवान बार बार आते हैं। और इस कलयुग में भगवान देखते हैं इतना दिखावा है और कलह, जैसे मैंने बताया छोटे छोटे बातों में बट गया संसार। फिर लोग कहते हैं शांति कहां है, शांति कहां है, शांति कहां पे है? शांति का तो सूत्र भगवान ने दिया है, भोक्ता राम तप सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूता नाम। जो व्यक्ति ये जानता नहीं कि भगवान हमारे सुहृद है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान सबके ईश्वर है, वो कैसे शांति को प्राप्त करेगा? चाहे वो रावण हो या हिरण्यकशिपु हो, वो शांति को कैसे प्राप्त करेगा? वो जानता नहीं है कि विष्णु उनका परम ईश्वर है, सुहृद है। इतना सिंपल बात है, शांति के लिए हम कितने भी मीटिंग करें, यूएनओ करो, ऑर्गेनाइजेशन लगाओ, कुछ उसका परिणाम नहीं निकलेगा, उल्टे और भेद होते जाएंगे। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं, यूएनओ को निकालकर 1940 में यूएनओ का स्थापित किया है, और उसके बाद आज उस समय कम से कम 50 या 80 देश थी, आज के समय में कितने सारे विश्व में देश हैं बताइए? कम से कम 150 से ज्यादा, यानी कि देश का बंटवारा हुआ या विश्व में बंटवारा ज्यादा हुआ कि मिलन ज्यादा हुआ? इतना बड़ा यूएनओ बनने से क्या फायदा हुआ? और वही प्रभुपाद जी जब हरे कृष्ण का आंदोलन पाश्चात्य देश लेकर गए, तो बंगाल में काले गोरे पीले सब आके नाचे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि ये काले पीले और गोरे सब लोग जान गए कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण परमेश्वर है, वृद्ध है, जन कर रहे हैं और शांति से सब नाच रहे हैं, वहां पे हल्ला नहीं कर रहे, नाच रहे हैं शांति। ये शांति भगवान का मार्ग दिखलाने के लिए भगवान आते हैं। ये कलह का जमाना है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। छोटी बातों में कुछ मतलब नहीं है, झगड़ा हो जाता है। गाड़ी को क्या धक्का लग गई, ट्रैफिक में जाम, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अरे फाइटिंग हो जाता है। छोटे छोटे छोटा सा धक्का लग गया, ठीक है 50 रुपया दे दो, 500 दे दो, खा, छोटी छोटी बातों में जो हरकत बच्चे भी नहीं करते, बड़े करते हैं।
कलह का जमाना है, इसमें शांति कहां से मिलेगा? ये दिखावा का जमाना है। देखो मैं कौन कितना बड़ा रेस्टोरेंट में खा रहा हूं, मैं देखो मेरे कपड़े उस फलाना कंपनी का है। लोगों का स्टेटस जो है देखा जाता है, अगर वो फलाना रेस्टोरेंट में गया या क्लब में का मेंबर है तो बड़ा आदमी है, फलाना कपड़ा ऐसा पहनता है तो ये ऊंचे स्तर का आदमी है। ये दिखावा का जमाना है। तो ऐसे दिखावा का जमाना में लोगों का मन भगवान में कैसे लगेगा? तो कहते हैं कि ऐसे पथभ्रष्ट होने वाले युग में भी कृष्ण का प्रति चेतना को जागृत कराने का एक सरल विधि है, वो विधि को लेकर आए युग अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कलयुग के लोगों को बोलो कि तपस्या करो तो नहीं करेंगे, उनका कमर कभी सीधी नहीं होती है। इतना गंदा आदत बचपन से पड़ गया कि कमर किसका कभी सीधा नहीं, तो तपस्या क्या करेंगे? वन में जाके पांव को मोड़ के, पांव तो मोड़ना आता ही नहीं है, चेयर में बैठ के खाए आज तक, केजी क्लास में बेंच में बैठे, डाइनिंग टेबल में बैठे, चेयर में बैठना चाहिए, कभी कभी टेबल में भी बैठ जाते तो पांव को मोड़ना तो आता ही नहीं है, पांव को मोड़ना तो बहुत मुश्किल से करते हैं हम लोग, फिर कमर को कभी सीधा किया है तो नहीं, आदत इतने गंदे हैं तो कमर कभी सीधा नहीं। इनको क्या तपस्या सिखाया जाएगा? और तपस्या भी स्त्रियों को नहीं दिया जाएगा, बच्चों को नहीं दिया जाएगा, वृद्धों को नहीं दिया जाएगा तपस्या नहीं। उनसे कहो यज्ञ करो, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा यज्ञ क्या करेंगे? वो यज्ञ क्या करेंगे? यज्ञ के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। आज इतना मिलावट है कि घी घी नहीं रहा, अमृत जहर बन गया। एक व्यक्ति इतना दुखी था, परेशान हो गया, वो आत्महत्या करने गया, ऐसा तगड़ा पॉइजन लिया, फिर देखा कि वो हॉस्पिटल में था तो वो कोर्ट में केस डाल दिया, बोला कि मैं अपनी जान को मारने के लिए पॉइजन लिया था, पर इस पॉइजन के फैक्ट्री वालों ने ऐसा घटिया पॉइजन बनाया कि इसमें भी इतना मिलावट कि मैं जहर समझ के इसे पिया, पर वो जहर में भी दम नहीं, इसमें भी इतना मिलावट है, इतना मिलावट है, चावल में मिलावट, दूध में मिलावट। आजकल लोग दूध पीते हैं पैकेट का, उनका किडनी फेल हो जाता है। 20 साल पहले किडनी फेलियर का नाम नहीं सुनते थे, दूध पीते पीते किडनी फेल हो, लस्सी पीते पीते, क्योंकि उस प्रकार का दूध दही है ये, इतना मिलावट। तो ये घी घी नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या डालते हैं इसमें, चर्बी डालते हैं, असली घी नहीं मिलता है, लकड़ी वो भी अच्छा नहीं मिलता है, वो तो मिलता ही नहीं है, जंगल सारे कट गए, कंक्रीट जंगल बन गए, तो स्वाहा क्या करेंगे यहां पे? ब्राह्मण ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से भी होना चाहिए, पर ऐसा दूषित हो गया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ना रहा, मुंह में पान व्यसन, उनके मंत्र में दम नहीं है, ऐसे युग में यज्ञ भी नहीं संपन्न किया जा सकता है। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना है वो एक आदमी का काम नहीं है, द्वापर का विधि, पर ऐसे में भी युग अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, कहा कि ठीक है ऐसे में भी मैं सबको भगवान का भक्ति में लगाऊंगा, और खुद आए और नाचे और गाए, कहा कि धर्म यह है कि नाचते गाते चलते फिरते खाते सोते सततम कीर्त यंतो माम ये जना
परिपासते। नाचो गाओ और सतत मेरा नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन का करते करते जो लोग नशा कर रहे थे वो नशा को ऐसे फेंक दिए जैसे कि उनका नशा से कभी संबंध ही नहीं था। ऐसे अवध संबंधों को छोड़ दिया मानो कि कभी उनका किसी से संबंध था। ऐसे शुद्ध विशुद्ध पवित्र हो गए। इस प्रकार से भगवान बार बार आते हैं हमारे चेतना को आबाद करने के लिए, उन्नत कराने के लिए। मनुष्य जीवन खास करके मिला है हमारे चेतना को आबाद करने के लिए, भगवान का भक्ति करके हमारी चेतना को उन्नत आबाद करने के लिए, ना कि ये रात को खा पी के मस्त रह के अपने चेतना को बर्बाद करने के लिए। ये जीवन मिला है आबाद करने के लिए, ना कि चेतना को बर्बाद करने के लिए। और ये विधि हरे कृष्ण महामंत्र का कारण कोई भी क्यों ना करे उनका चेतना तुरंत उन्नत हो जाएगा। उन्नत होगा, इतना उन्नत होगा, हमने देखा अपने आंखों से। हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे लोग आए जो बहुत दुखी थे, हमने कहा चिंता मत कर, अब भगवान का नाम जप कर। और जप करते करते चार पांच साल में ऐसे सुखी लग रहे हैं, ऐसे सुखी लग रहे हैं, भगवान की सेवा में ऐसे मस्त हो गए जैसे कि उनके जीवन में पहले कभी दुख नहीं था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना तगड़ा है ये, इतना तगड़ा है ये भक्ति का शक्ति, इतना शक्ति है इसमें। नाम नामकारी पूरा शक्ति बन गया। इस भक्ति के विधि को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, तक्षण स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है जिससे हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई इससे सरल और कोई विधि नहीं है। बोलेंगे नहीं, मैं सोते सोते रहूं और मेरा चेतना का उन्नत हो, मैं कुछ नहीं करूं खाते पीते रहूं चेतना का उन्नत हो। फिर भी हरे कृष्ण आंदोलन में आप जुड़ जाओगे, प्रसाद पे प्रसाद खाते रहो, आपका उन्नत हो जाएगा। प्रसाद पाते पाते आपका चेतना का उन्नति हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मौनी तपस्वी सूखा रूखा खाते रहे भले, मेरे आंदोलन में मेरे अनुयायी रसगुल्ला खा के फीस्ट पा पा के भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, उनका चेतना उन्नत हो जाएगा। खाते खाते चेतना का उन्नति होगा। भगवान का प्रसाद में इतना दम है। कुछ भी ना करो, केवल आप हरे कृष्ण मंदिर में आओ, कीर्तन में कीर्तन भी मत करो, केवल श्रवण करते रहो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। इसमें इतना शक्ति है, इस आंदोलन में इतना शक्ति है। प्रयास थोड़ा सा कीजिए, शरीर को उठाओ, भक्तों के संग में अपने आप को लाओ, बस बाकी ये विधि जो है कर देगा। दूसरा भक्त जप करेगा, आप सुनते रहो, इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। दूसरा भक्त पकाएगा, भोग लगाएगा, आप खाते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा। चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग, बीच में मन किया तो नाचो कीर्तन में, आपका उद्धार हो जाएगा। हुआ है और होगा, हो रहा है और भविष्य में भी होगा इस प्रकार से। तो इस अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देना। अगर थोड़ा शक्ति है तो मुंह को थोड़ा ऊपर नीचे करो, हरे कृष्णा बोलो, तो और भी ज्यादा तीव्रता से और भी तेज गति से आपका चेतना का उन्नत हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सारे देवता हैं कष्ट के कारागर में उपस्थित हैं, और भगवान से कह रहे हैं कि आप जब भी आते हो आप अपने दिव्य स्तर पर रहते हो, आपका शरीर दिव्य है और आप आते हो हम सबके परम कल्याण के लिए, और हम सबका परम कल्याण भगवान का भजन करने के लिए। आप कभी कभी योग का पद्धति देते हैं, कभी तप का पद्धति देते हैं, कभी आप और समाधि में जाने का आप विधि बताते हो। इन सब विधियों के बारे देखकर हम सबका कल्याण हेतु आप आते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार से ये प्रार्थना और जारी रहेगा। इन प्रार्थनाओं का आनंद लेने के लिए आप आते रहिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। हरे कृष्णा। एकाध किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये सुंदर प्रार्थना है, इसकी श्रृंखला चलती रहेगी कल परसों, ये अध्याय के अंत तक, और इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।